Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirai Nashta Praesha Badresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki Om Gyanj Vrandasya Gyanjana Shalakaya Chaksharan Miridam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishnam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतावदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणालिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आस्यात्तदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने श्रीवाशवानवी देवी नैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमे स्वम् निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैश्वसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय च कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो रष्ट्रालिविसेव्यमानः स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपिनाथः श्रियस्तु नः नर्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाध श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अभी कुछ दिन पहले हमने नरसिंह चतुर्थी मनाया भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य दिवस अस्तित्व में जो भगवान नरसिंहदेव का जो प्राकट्य दिवस है इको भले ही हम उनको नरसिंह लीला कहते हैं भागवत में नरसिंह लीला सातवें स्कंध में पहले 10 अध्याय में उसका वर्णन है ये 10 अध्याय जो सातवें स्कंध के हैं वो नरसिंह लीला नहीं है वो प्रहलाद लीला है प्रहलाद महाराज का चरित्र है क्योंकि पहला अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में संवाद होता है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा भगवान जो है सम سیلا صورت دمن. بھگوان جو ہیں سب کے لیے سمان ہیں اور سب کے سورد ہیں اور سب کے لیے پریہ ہیں. اگر بھگوان کرشن سب کے لیے پریہ ہیں, سب سے پریم کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے کہ اسر لوگ آتے تو ان سے فائٹنگ کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں؟ اگر سب کے لیے سمان ہیں, دیوتاؤں کا پکشپات کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب کے پرتی ان کی مترتا کی بھاونا ہے, اسروں کو دشمن کیوں مانتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے بھگوان ہیں, سب کے لیے سمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک پتا ہے, پتا سارے پتروں کو سمان درشٹیکون سے دیکھ بھال کرنا چاہیے. ایسا کیوں نہیں بھگوان پکشپات کرتے ہیں؟ یہ وشم آئیوا, وشم کیوں ہے بھگوان نے ایسا پرشن تھا. تو سکھدیو گوسوامی ورنن کرتے ہیں یہ ہمارا برہم ہے کہ بھگوان پکشپات کرتے, بھگوان پکشپات نہیں کرتے. یہ تمہارا جو پرشن ہے وہی پرشن کس نے پوچھا؟ یدھیشٹھر نے نارد سے پوچھا تھا راجسوئی سبھا میں. یدھیشٹھر نے نارد سے پوچھا کہ نارد جی بتائیے, ابھی ہم نے پرتیکش دیکھا ہے شیشوپال نے کیا کیا راجسوئی سبھا میں, بھگوان کا خوب نندا کیا, کرشن کا اتنا نندا کیا, نتیا نندا کیا, اور کرشن بھی انہوں نے وچن دیا تھا 100 بار اوپر سے نندا ہوگا تو میں مار دوں گا. جب نندا حد کا حد بڑھ گئی تو کرشن نے شیشوپال کو مارا تو کیا ہوا, سارے سبھا سب لوگ دیکھ رہے تھے, شیشوپال کے اندر سے جو آتما ہے وہ نکل کے کرشن کے شریر میں پرویش کر گیا, یعنی ان کو سوج مکتی پراپت ہوا. تو یدھیشٹھر مہاراج ایک دم حیران ہو گئے. یوگی لوگ ہزاروں سال تپسیا کرنے کے بعد بھی جو چیز پراپت نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پراپت ہو گیا, شیشوپال کو بھی گالی دے کے پراپت ہو گئے مکتی, بھگوان کو نندا کر کے شیشوپال کو مکتی پراپت ہوا. یہ اتنا سال تپسیا کرنے کے بعد بھی جو یوگیوں کو پراپت نہیں ہوتا ہے وہ شیشوپال کو بھگوان کا نندا کر کے پراپت ہوا. یہ کیا ایسا کوئی سسٹم ہے کیا, بھگوان کو نندا کریں گے تو اب مکتی پراپت ہو جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے, اگر بھگوان کو نندا کرنے سے, کرشن کا نندا کرنے سے مکتی پراپت ہوتا ہے تو وین نے بھی نندا کیا تھا کرشن کا, بہت نندا کیا تھا, راجا وین کر کے تھا, انگ کا پتر وین ہے, بہت اصلی پروتی کا تھا, تو وین نے بھی بہت نندا کیا, بہت انہوں نے اتنا دشٹ باتیں کہا, دشوار کیا بھگوان کے پرتی. ایسا ہے تو وین کو نرک کیوں جانا پڑا؟ پہلا پرشن یہ تھا, شیشوپال بھگوان کو نندا کرنے کے بعد بھی شیشوپال کو مکتی ملا. اگر نندا کرنے سے مکتی پراپت ہوتا ہے تو وین کو بھی مکتی پراپت ہونا چاہیے, وین کو نرک کیوں پراپت ہوا؟ اور جیسے پرشن پوچھے نارد جی نے کہا, یدھیشٹھر سنو, تب انہوں نے اتہاس سنایا. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھگوان اس پرکار پکشپات کرتے ہیں, پر حضرت دھیان سے دیکھو, شیشوپال نے جب نندا کیا تھا کرشن کا, کیسے نندا کیا تھا معلوم ہے؟ پر آپ دل سے گالی دیا تھا. جب وین نے نندا کیا بھگوان کا تو ایسے ہی بول دیا تھا. پورن طریقے سے شیشوپال 24 گھنٹہ کرشن کا اسمرن کرتے کرتے وہ کرشن کا نندا کیا, یہاں دل سے دشمنی تھا, وہ دشمن تھا, وین تو ایسے نندا کر دیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو شیشوپال کرشن کے پرتی اتنا ان کا چت لگا ہوا تھا, وہ اس کا پنیہ کرم کا پربھاؤ کی وجہ سے ان کا جو کرشن کو نندا کرنا ہے اس کا پاپ جو مٹ گیا, ختم ہو گیا, اس لیے ان کو اس پرکار کا سوج مکتی پراپت ہوا. دوسری اور وین کا اس پرکار نہیں تھا, سنس بھی بھگوان کا بھکتی گیا تھا, کسی نہ کسی طریقے سے بھی یہ نہ کے نہ پرکار ہے نہ من کرشن نیوجے, کسی نہ کسی طریقے سے بھگوان کے چرن کملوں میں جو من لگاتا ہے اس کو ادھار ہوتا ہے, چاہے دشمن کے روپ میں کیوں لگائے, چاہے کروھ میں لگائے, चाहे काम की उपवश में लगाए, किसी न किसी तरीके से लगाए कि कृष्ण का स्वभाव है, जो भी व्यक्ति उनका स्मरण करता है उसका उद्धार होना ही है, चाहे वो दुश्मन के रूप में स्मरण न क्यों न करे। तब नारद जी युधिष्ठिर महाराज को इनकी इतिहास बताते हैं, ये कौन है शिष्यपाल, कौन है दंतवक्र। आप सबको ये लीला मालूम है किस प्रकार जय विजय ने चार कुमारों को रोका था, चार कुमार ने शाप दिया जय विजय को, आप इधर रहने लायक नहीं हो आध्यात्मिक जगत में, हम शाप देते हैं कि तुम तीन लोकों में या तीन बार तुम जन्म लोगे भौतिक जगत में असुर के रूप में। तो सबसे पहला उनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, बाद में रावण दंत रावण कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल दंतवक्र जी। जब पहली बार उनका जन्म हुआ पहला अवतार में, जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रूप में आए, हिरण्यकशिपु को वध किया नरसिम्हदेव ने। हिरण्यकशिपु को क्यों वध किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र द्वालक, अपना पुत्र जो महात्मा है प्रहलाद महाराज को तकलीफ किया। जब ये बात सुने युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रश्न पूछे, हमने सुना प्रहलाद तो बहुत अच्छा भक्त है, सारे प्रकार के सद्गुणों से संपन्न है, इतने अच्छे सद्गुणों से संपन्न होने पर भी और उनके स्वयं पिता उनके प्रति द्वेष की भावना रखे, ऐसा माना जाता है कि मान लो पुत्र दुष्ट है तो उसको मारा जाता है, मान लो पिता है उसका कोई पुत्र है वह दुष्ट है तो उसको ठीक करते हैं मारपीट के या कुछ तो कर सीधा करते हैं, लेकिन द्वेष नहीं करता है कोई पिता अपने पुत्र से। तो ये हिरण्यकशिपु अपना जो महात्मनी महान गुणों से संपन्न प्रहलाद महाराज से द्वेष क्यों किया। अच्युतात्मता, जो भगवान के हमेशा स्मरण करते इतना अच्छा महान भक्त है प्रहलाद, उनके प्रति हिरण्यकशिपु का द्वेष का कारण क्या है, क्यों द्वेष किया, मैं प्रहलाद के विषय में सुनना चाहता हूं। ये प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज का पहला अध्याय में सातवा स्कंध का, उसके जवाब में बाकी नौ अध्याय है। यानी दूसरे शब्दों में भक्त का जो कथा है उसका वर्णन किया, प्रहलाद महाराज की भक्ति का वर्णन किया नौ अध्यायों में, और प्रहलाद महाराज का भक्ति का वर्णन करते करते बीच में नरसिम्हदेव आ गए। अस्तित्व में ये प्रहलाद का प्रसंग है, नरसिम्हदेव का प्रसंग नहीं है, ये भागवत का रीति है। शुरुआत में भागवत में शुरू हुआ, नैमिषारण्य ऋषि ने जब प्रश्न पूछे, जब दूसरी बार प्रश्न पूछे भागवत के विषय में चौथे अध्याय में नारद व्यास का संवाद हुआ, उसके बाद जब सुत गोस्वामी वर्णन करना शुरू किए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं वर्णन करूंगा किसके विषय में, कुंती के विषय में, परीक्षित के विषय में, भीष्म पितामह के विषय में, सुखदेव गोस्वामी के विषय, परीक्षित महाराज के विषय में, ये सब कौन है, ये सब भक्त कथा। तो भक्त कथा के द्वारा ही भागवत कथा में भगवत कथा में पहुंचा जा सकता है। भगवत कथा अगर कोई सीधा सुनना चाहता है, वैसे तो भगवत कथा और भक्त कथा तो अलग नहीं है, दो अलग नहीं होने पर भी जब विशेषतः भक्त के विषय में चर्चा करेंगे निश्चित रूप में भगवान की चर्चा होगी, लेकिन जब विशेषतः जब भक्त के विषय में चर्चा करते हैं तब भगवत कथा में प्रवेश कर सकते हैं। ये भागवत का सिद्धांत है, भक्त कथा जो है भगवत कथा के अंतर्गत प्रवेश करने का एक द्वार है, एक दरवाजा है। कोई भी कमरे में जाना चाहते हो कैसे जाएंगे, हम दरवाजे से जाएंगे कि नहीं, तो इसलिए भक्तों का कथा चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ये प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, या कोई विशेष भक्त का जन्मदिन होता है या प्राकट्य होता है प्रकट होता है, उस दिन उन भक्तों का महान आचार्यों का चर्चा करते हैं, क्योंकि ये चर्चा करने के द्वारा हमको तुरंत ही भक्ति प्रकट होता है हृदय में। मान लो किसी को भौतिकवादी व्यक्ति है, उनको कृष्ण कथा सुनाएंगे वो विश्वास नहीं करेगा, अपराध कर बैठेगा, लेकिन प्रभुपाद जी को सुनेंगे अरे ऐसा है क्या, 70 सालों ने ऐसा काम किया, ऐसा है, नास्तिक व्यक्ति भी वो मानेगा प्रभुपाद जी को कि नहीं। लेकिन अगर आप वही चीज अगर कृष्ण ने 7 साल का भारत का गोवर्धन उठाए थे, क्या फालतू चीज बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हो सकता है क्या, ऐसा बात कर रहे हैं। तो ये शक्ति है भक्त कथा में। इसलिए दो प्रकार के भागवत है, ग्रंथ भागवत है और भक्त भागवत है, और ये ग्रंथ भागवत में क्या शैली है,
भक्त भागवत के द्वारा ही भगवत कथा, यानी भक्त कथा के द्वारा ही भगवत कथा के अंदर प्रवेश करना है। तो सत्य में एक प्रकार देखा जाए पूरा नरसिंह लीला जो है नरसिंह लीला नहीं है, वो क्या है, वो ये प्रहलाद का चरित्र है। और आश्चर्य की बात यह है राजसूय सभा में कौन कौन थे, सब लोग थे। सब लोग मतलब नहीं कि ऐसा प्रजा आए कि नहीं, सारे देवता उपस्थित है, इंद्र उपस्थित है, सब लोग बड़े बड़े लोग, सब ऋषि मुनि सब लोग उपस्थित है। सबके सामने घटना हुई और सबके सामने युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछ रहे हैं और नारद जी प्रवचन दे रहे हैं। किसके विषय में प्रवचन दे रहे हैं, प्रहलाद कौन है, नारद जी का शिष्य, अपना शिष्य का गुणगान कर रहे हैं नारद जी, और गुणगान करने में बड़ा आनंद ले रहे हैं। गुरु शिष्य का गुणगान कर रहे हैं, हमने ये देखा कि शिष्य गुरु का गुणगान करते हैं, ऐसा हमने सुना है, शिष्य लोग गुरु का गुणगान करते हुए सुना है। लेकिन ऐसा शिष्य बनो ताकि गुरु आपका गुणगान करे, वो है प्रहलाद नारद जी जैसा। नारद जी साधारण भक्त नहीं है, हर जगह नारद जी जो है भगवत लीला में मसाला है। अगर नारद जी नहीं होते भगवान लीला फीका हो जाता है। और कहीं भी जाओ, कोई भी शास्त्र खोलो, कोई पुराण खोलो, जब तक नारद जी का एंट्री नहीं होता है ना, तब तक क्या चल रहा है, चलने दो। जैसे नारद जी आए तब लगता कुछ तो होने वाला है, ठीक है ना। भगवान रामचंद्र का प्राकट्य उनकी वजह से हुआ, कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो, कृष्ण का प्राकट्य उनकी वजह से हुआ, कहीं भी कुछ भी होता है, नारद जी ना कुछ रोल रहता है, वो रोल एकदम बिल्कुल टर्निंग पॉइंट रहता है पूरा जिला में। तो वैसे महान नारद जी जिनका चरित्र हमने पहले स्कंद में सुना था, वो स्वयं अपने बारे में कहते हैं, किनको, व्यास को कहते हैं, व्यास अपना शिष्य है। और व्यास देव को नारद जी क्या कहते हैं, अपने गुरुओं का गुणगान करते हैं। लेकिन वो तो पहले स्कंद में पांचवां और छठे अध्याय में हुआ, लेकिन सातवें स्कंद में नारद जी स्वयं क्या कर रहे हैं, अपना शिष्य का गुणगान कर रहे हैं, इज ग्लोरीफाइंग प्रहलाद। तो हम सुनते हैं कि प्रहलाद के गुणों को, नारद जी के मुख से प्रहलाद के गुणों को सुनते हैं। वैसे तो पूरा स्टोरी आपको मालूम है, पूरा बताऊंगा नहीं, लेकिन चौथे अध्याय में, सातवें स्कंद के चौथे अध्याय में नारद जी प्रहलाद महाराज के गुणों को वर्णन करते हैं। और वर्णन करते हुए युधिष्ठिर महाराज को ये कहते हैं, ये पता नहीं ये भक्ति कहां से आया प्रहलाद में, उनको मालूम है उनसे ही आया है ये भक्ति कहां, ये इसका स्वाभाविक रति है, उसका नेचुरल है। तो प्रहलाद महाराज के गुणों को हम सुनते हैं, क्योंकि भक्तों गुणों को सुनने के द्वारा वो गुण हमारे अंदर भी आ जाता है। एक बात देखिए, हम ये सही बात है, हमको एक भक्त का वेशभूषा धारण करना है, लेकिन वेशभूषा धारण करने मात्र से हम भक्त नहीं बनते। तिलक हुआ, कंटीमाला हुआ, ड्रेस हुआ, ये वैष्णव का वेशभूषा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो धारण करने मात्र से वैष्णव बन जाते हैं। तो वैष्णव गुणों के द्वारा हम पहचाना जाते हैं, हमारी जो वैष्णवता है, भक्ति जो है गुणों के ऊपर आधारित है, हमारे व्यक्तित्व जो है गुणों के ऊपर आधारित है, गुणों के द्वारा हमारा व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व के द्वारा हमारा पहचान होता है। इसलिए गुणों का विकास के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शिक्षा मतलब दिव्य गुणों का विकास, यही शिक्षा कहा जाता है। कैरेक्टर बिल्डिंग इज एजुकेशन। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल की कॉलेजों में, स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा ही नहीं है, क्योंकि उधर गुणों का विकास के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। उधर चर्चा होती है वो कैसे अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनेगा कि उसको कोई शिक्षा नहीं होता है। उनको ऐसा शिक्षा नहीं दिया जाता है कि ये अच्छा व्यक्ति बनेगा कि नहीं। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रवेश परीक्षा जिसको कहा जाता है, ये प्रवेश परीक्षा ऐसी चीज है जिसके अंदर वो जांच किया जाता है ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति क्या ये डॉक्टरी कर पाएगा, क्या ये व्यक्ति इंजीनियरिंग कर पाएगा, इसको जांचा जाता है। क्या ये डॉक्टरी का ज्ञान को संभाल पाएगा, इसका जांच नहीं किया जाता है। यही इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करते वो आतंकवादी बन सकता है, बहुत अच्छा आतंकवादी इंजीनियर है। तो पहले जमाने में ऐसा था कि वैदिक सिस्टम के अनुसार योग्यता, क्या ये शिक्षा को समझ पाएगा कि नहीं, उसका वो योग्यता नहीं देखते थे, ये देखते हैं कि ये शिक्षा का सही इस्तेमाल करेगा कि नहीं। मान लो हमने ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या इस ज्ञान का सदुपयोग करेगा, सबकी कल्याणकारी कार्य करेगा, खुद का कल्याण होगा उससे, वो देखा जाता था। उसके लिए एक उदाहरण देता हूं। एकलव्य आया था द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने कहा तो को मैं सिखाऊंगा नहीं, एकलव्य प्रण लिया मैं आपसे ही सीखूंगा। उन्होंने द्रोणाचार्य का एक विग्रह बनाया और नए अपना अस्त्र शस्त्र कला को सीखा। द्रोणाचार्य और अर्जुन एक दिन जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा एक कुत्ता भौंक रहा था। अचानक से सात दिशाओं से सात बाण आया और कुत्ते का जो भौंकना जो है वो बंद हो गया, वो बाण जो है कुत्ते के मुंह के ऊपर सात जगह फंस गया। अर्जुन ने देखा कि इस प्रकार की कला तो मुझे भी नहीं आता है, क्या अद्भुत शस्त्र विद्या है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आपने ये बात तो ये सब चीजें मुझे सिखाई नहीं, आपने कहा कि वादा किया था कि मैं सबसे बड़ा अच्छा योद्धा रहूंगा खास करके धनुष बाण चलाने में। तब द्रोणाचार्य थोड़ी देर अर्जुन के साथ में गए और उन्हें देखा उधर एक जगह था जहां एकलव्य ये कला की धनुष बाण चलाने की धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य को देखा तुरंत द्रोणाचार्य के पास आके प्रणाम किया और द्रोणाचार्य को उन्हें कहा कि आपसे ये सब विद्या सीखा हूं। द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझसे सीखे हुए तो मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो एकलव्य तुरंत पूछा क्या चाहिए, कहा कि मुझे दाएं हाथ दाहिने हाथ का ये अंगूठा है उसको काट के मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दो। तुरंत काट के दे दिया। अभी सारा संसार कहता है एकलव्य जैसा कोई गुरु भक्त नहीं है कि नहीं। गुरु ने बोला अंगूठा काट के दे दिया, देखो कितना बड़ा गुरु भक्त है। लेकिन हम कहते हैं वैष्णवाचार्य कहते हैं एकलव्य जैसा गुरु द्रोही और कोई नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, इतना बड़ा गुरु भक्त है वो, गलती तो द्रोणाचार्य का था। इतना अच्छा स्टूडेंट को उन्होंने बोला कि मैं नहीं सिखाऊंगा, बाद में तुमने देखा कि अपना मान रखने के लिए उनका अंगूठा काट दिया। द्रोही कौन है, द्रोणाचार्य है। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, गुरु द्रोही कौन है। इधर लोग बोलते हैं, जनता बोलती है द्रोणाचार्य जो है शिष्य द्रोही है और एकलव्य जो है गुरु भक्त है। लेकिन बात यह है कि एकलव्य गुरुद्रोही है और द्रोणाचार्य कौन है, वो सारा जगत कल्याण करने वाले हैं, महान ब्राह्मण है द्रोणाचार्य। तो क्यों नहीं शिक्षा दिया उनको, क्योंकि द्रोणाचार्य को मालूम था अगर मैं उनको धनुर्विद्या सिखाऊंगा वो कुत्ते को प्रयोग करेगा। कुत्ता भोंकना उनको भोंकना उनका काम है कि नहीं, इतना बड़ा धनुर्विद्या वो किसके ऊपर प्रयोग किया था, यानी वो शिक्षा का दुरुपयोग। द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये एकलव्य के अंदर उतना गुण नहीं है, भले वो धनुर्विद्या सीख लेगा लेकिन धनुर्विद्या को कहां और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका प्रयोग कहां करना चाहिए, किसके ऊपर करना चाहिए, उन सब का विचार करने का गुण एकलव्य में नहीं है। तो इसलिए गुण महत्वपूर्ण है, गुणों का विकास। इतना हद तक कि हमारा साधना एक पूजा तपस्या दान जितने भी वो सब करते हैं उसका परिणाम उसका उद्देश्य यह हो कि हमारे हृदय में दिव्य गुणों का विकास हो, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। तो उसका लिस्ट नारद जी वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज के अंदर गुण, ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्य संदोजितेन्द्रिय आत्मसर्वभूतानामेक प्रिय सुरुत्तमा दासवत्सन्तांग्रीः पितृवत् दीनवत्सला भ्रातृवत् सदृशे सिद्धो गुरु शिष्यन भावनः विद्यार्थरूप जन्माद्यो मानस्तंभ विवर्जितः। सबसे पहला ब्रह्मण्यः शिर संपन्नाः नारद जी श्री राधा गिरधार भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की ब्रह्मण्यः शिर संपन्नाः। ब्रह्मण्यः सबसे पहला है ब्रह्मण्य। ब्रह्मण्य मतलब सारे दिव्य ब्राह्मणों के गुण से संपन्न है। ब्राह्मण के गुण का है क्या है? समोदमस्तौचम शांतिरार्जुने वच। खास करके इधर ब्राह्मण ब्रह्मण्य अर्थ है कि वो ब्रह्म शब्द का अनेक अर्थ है। इधर ये अर्थ ये है कि वो वेदों के या वेदिक ज्ञान को वेदिक ज्ञान में रथ है प्रहलाद महाराज, यानी वेदों का ज्ञान था प्रहलाद महाराज के पास, यानी शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करते थे, इसलिए उनको ब्रह्मण्य कहा गया है। देखिए शास्त्रों का अध्ययन के बिना किसी के पास भी अच्छे गुण नहीं हो सकते, इट इम्पॉसिबल। आजकल जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं हम बोलते हैं कि आपके बच्चों को हम गीता भागवत पढ़ाना चाहते हैं, नहीं नहीं वो सब चीजें मत पढ़ाइए, देखिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाए। वो कैसे होंगे? जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दोगे तब तक अच्छे गुण विकास नहीं होंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे हो, लेकिन आप नहीं नहीं हम जैसे वैसे रहने दिए प्रभु जी। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करोगे, जब आप बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दोगे तभी वो अच्छे बनेंगे। इसलिए सबसे पहला बात यह है कि वैदिक ज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। गीता भागवत का पाठ हर रोज घर में खुद करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, तभी तो बच्चे अच्छे होंगे, दिव्य गुणों का विकास होगा। हमारे यहां जब बच्चों के कार्यक्रम होते हैं माता पिता के बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, हम बोलेंगे आप भी जरा बैठिए, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे अच्छे हो जाए ठीक है, हम तो ऐसे रहना चाहते हैं। उनके लिए अच्छा मतलब क्या है? मैं जो भी बोलूंगा वो करें। आप दुष्ट हो तो आप बोलेंगे, वो जो क्या बोलेंगे दुष्टि से बोलेंगे तो वही वो दुष्टि से करेंगे। तो सबसे पहला गीता भागवत रोज पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इट। जो नहीं पढ़ता वो दुष्ट है, क्योंकि दुष्ट बुद्धि रहेगी, अच्छे गुण कभी विकास होंगे नहीं। कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करे, गीता भागवत पढ़े बिना कोई व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता। प्रहलाद महाराज सबसे पहला, क्योंकि उसका आधार है शास्त्र, हर चीज का आधार है। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः, शील संपन्ना मतलब सारे दिव्य गुणों से युक्त है। क्यों युक्त है? क्यों सारे दिव्य गुणों से युक्त है? क्योंकि वो ब्रह्मण्यः, क्योंकि उनका चित्त हमेशा वैदिक शास्त्रों का अध्ययन में लगा रहता था। क्या है वो दिव्य गुण? उसका लिस्ट देते हुए नारद जी कहते कि आत्मवत् सर्वभूतानां, दिव्य गुणों के लिस्ट में सबसे पहला है आत्मवत् सर्वभूतानां। आपका दूसरों के साथ क्या व्यवहार है, ये दिव्य गुणों का नंबर वन पॉइंट है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतानां, जो स्थानिक पंडित इसी बात कहा, आपको लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि आप लोगों से किस प्रकार आपके साथ व्यवहार आशा करते हैं। आप जो आशा करते हैं कि लोग इस प्रकार में ऐसे व्यवहार करें, उसी प्रकार का व्यवहार आपका दूसरे के साथ होना चाहिए। चाहे दूसरा व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करे, कुछ भी करे, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो उस प्रकार होना चाहिए कि आप दूसरों से जिस प्रकार आशा करते हो उसी प्रकार हमारा व्यवहार दूसरों के साथ होना चाहिए। इज अ क्वालिटी फॉर डिवोटी। प्रहलाद महाराज ऐसे थे, हिरण्यकशिपु कितना दुर्व्यवहार किया, स्वयं पिता ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के प्रति जरा सा भी द्वेष भावना नहीं, जरा सा भी कोई द्वेष की भावनाएं, जब इतना हद तक कि नरसिंह देव ने पूछा अभी क्या चाहिए तुम वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए, मैं कोई वणिक नहीं हूं, मैं एक बिजनेस करने के लिए नहीं है आपके पास। तब प्रहलाद महाराज तो फिर वापस आए, पूछ तो उन्होंने पूछा कि मेरा पिताजी का सोचिए, भला सोचिए। जो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए तत्पर थे, प्रहलाद महाराज उनके लिए हित सोच रहे हैं। इसलिए शील संपन्ना सारे सद्गुणों में सबसे पहला सद्गुण ये है कि आप किस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करते हो। आजकल देखा जाए प्रत्येक घर, प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक इलाका पागलखाना बन गया है। लोगों को पागलखाना भेजा जाता था, अभी पागलखाना बोलते जहां उधर ही रहो, क्योंकि आपके लिए वही ठीक है, क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। आप आ गए तो हमारे पर ज्यादा भोजन, नहीं तो इधर के अंदर के लोग भी पागल हो जाएंगे आपकी वजह से। आप जहां उधर ही रहो, आप पागलखाने में जाओ, किसी घर में चले जाओ, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो अच्छा है। हंसे वो झगड़ते एक दूसरे के दिन, कुछ रिश्ता तो है ही नहीं, बिना रिश्ता का झगड़ रहे, इधर तो रिश्ता के साथ झगड़ रहे। कितना दुर्व्यवहार, किस प्रकार, देखिए आजकल बच्चे माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार, पत्नी पति के प्रति दुर्व्यवहार, पति पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार, अड़ोस पड़ोस वाले में दुर्व्यवहार, ये क्यों है मालूम है? क्योंकि भक्ति नहीं, गीता भागवत का प्रचार नहीं हो रहा है। और जैसे गीता भागवत का प्रचार होगा, भक्ति प्रचार होगा, दिव्य गुणों का विकास होगा। दिव्य गुणों का विकास से सबसे पहला यह है कि ये सद्गुण शील संपन्ना आत्मवत् सर्वभूतानाम, आत्मवत् सर्वभूतेषु, बाद में आत्मवत् सर्व ब्रह्मण्य शील संपन्नो सत्यसंदो जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम। जितेंद्रिय का अर्थ किया इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना। प्रहलाद महाराज इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। हमारी इंद्रिया जो है वो एक, उसके वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वो घोड़े जैसे है। अगर उसको बुद्धि के द्वारा नियंत्रण नहीं किया गया, वो इंद्रिया घोड़े होने की वजह से इधर उधर कहीं भागते हैं। जब आपका जो शरीर है, जो रथ के बराबर तुलना किया गया, वो हड़बड़ा जाएगा, आपका आंख कहीं खींच रहा है कभी, आपका जिह्वा कहीं खींच रहा है, टोटल खेओस, पूरा जीवन जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। हम सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने के बाद सुखी हो जाएंगे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति हमको पागल बना जाता है, बना देता है। आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुरुत्तम, एक प्रिय सुरुत्तम, सुरुत्तम, एक प्रिय सुरुत्तम। भगवान को ही एकमात्र प्रिय व्यक्ति के रूप में मानते हुए, सुरुत्तम भगवान को ही एकमात्र मित्र के रूप में मानते हुए चलना, इसको एकवत सुरुत्तम। इस जगत में हम किसी को मित्र मानते हैं, किसी को बंधु मानते हैं, लेकिन इस जगत में हमारा ना किसी का मित्र है, ना हमारा कोई मित्र, हमारा कोई बंधु है। हमारा एकमात्र मित्र, एकमात्र बंधु है भगवान श्री कृष्ण। हमको दूसरों की वजह से क्यों दुख होता है मालूम है? क्योंकि हमने दूसरों से ज्यादा आशा किया था, एक्सपेक्टेशन। हमारी दूसरों से आशा बहुत थी, इसकी वजह से निराशा हो जाती है। आशा ही नहीं तो निराशा कहां होगा? जैसे मान लीजिए कोई दो मित्र है, वो सोचेगा ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वो करेगा, ये करेगा, बहुत सारा आशा रहता है, उसकी वजह से निराशा होती है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति आपकी आशाओं को पूरा नहीं कर सकता। एक स्त्री सोचती है कि मेरा विवाह हो जाएगा, मेरे पति वो करेगा, ये करेगा, बहुत सारा आशा रखती है, बाद में निराश होना पड़ता है। पति सोचता है मेरी पत्नी मेरी ऐसा सेवा करेगी, वैसा करेगी, वैसा करेगी, विवाह करता है, उसके बाद असलियत पता लगता है। अरे रे, तो गलती उनका नहीं है, क्योंकि वो लोग भगवान नहीं है, आपकी सारे आशाओं को पूर्ण कर पाए। आप किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो इस दुनिया में, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आपके बंधु, आपके मित्र, कोई भी व्यक्ति से आप अगर कोई कुछ आशा करते हो वो गलती आपका है। एक ही बंधु है, एक ही मित्र है भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब थोड़े दिन के लिए आपके साथ में आए चले जाएंगे, बाद में। नारद जी कहते हैं एक प्रिय सुरुत्तम दासवत सन्नतांग्रही, दासवत सन्नतांग्रही, अपनी दासता, दास मतलब सेवा। भगवान और भगवान की जो भक्त होते हैं ये दासता केवल उनके लिए है, उन्हीं के प्रति दास बन के रहना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं इंद्रियों के दास बन गए, और अन्य जो लोग इंद्रियतृप्ति में लगे हुए उनका दास बन, उनका सेवा करते हैं। प्रहलाद महाराज दासवत सन्नतांग्रही पितृवत दीनवत्सलाह, उनका और एक गुण था पितृवत दीनवत्सलाह, दीन व्यक्ति होते, दीन लोग होते, ऐसे प्रजा होती हैं। उनके प्रति प्रहलाद महाराज की क्या भावना थी, पितृ एक पिता होता है, पितृवत दीनवत्सलाह, दीन लोगों के प्रति एक पिता के रूप में व्यवहार करते प्रहलाद महाराज। एक पिता क्या करते हैं, अपने बच्चा जो है अगर मान लो कि बीमार हो जाता है और बच्चों को देखभाल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमेशा उनकी चिंता रहती है अरे ठीक हो जाए, कंसर्न रहता है। उसी प्रकार इस जगत में जितने भी दीन लोग हैं, असल में सभी लोग दीन हैं लेकिन जानते नहीं दीन है और सोचते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, समस्या हो है। सभी दीन हैं और उनके प्रति दीनता पितृवत पिता के रूप में, क्योंकि गलती करना जो है वो जीव का स्वभाव होता है, बद्ध जी का स्वभाव है गलती करना। पिताजी जो है अपने बच्चों का गलती अगर करते भी हैं तो उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस जगत में सभी लोग दीन हैं और उनके प्रति दीन वत्सला वात्सल्य भावना, माफ करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा पितृवत दीनवत्सला भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो, भ्रातृवत सदृशे, सदृश मतलब समान लोग होते हैं, जैसे आपके भाई मित्र कुछ समाज में समान लोग। हमेशा ये देखिए कि समाज में कहीं भी जाइए, कोई भी समाज में कहीं भी बैठिएगा, आपके मुलाकात तीन प्रकार के लोगों से होता है। तीन प्रकार के लोगों के साथ आपका संबंध होगा ही, एक आपके जूनियर आपसे आपसे ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे आयु में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे धन में हो, कोई भी चीज में हो, गुणों में हो, अनुभव में हो, आपसे जो कनिष्ठ है, आपसे जो निम्न स्तर में है, जो आपके ऊपर निर्भर करते हैं वैसे लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके समान होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे वरिष्ठ होंगे। ये तीन प्रकार के लोग हमेशा मिलेंगे ही आपको। आप कहीं भी जाइए, वेरे आप ऑफिस में जाइए, घर में जाइए, मंदिर में आइए, कोई कोई आदि जगह जाइए, कहीं भी जाइए, ये हमेशा ये तीन प्रकार के लोग होंगे। तो इनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए मालूम होना आवश्यक है। बद्ध अवस्था में क्या सोचते, अरे ये कोई क्वालिफाइड, इनको थोड़ी रेस्पेक्ट देने के, ये थोड़ी ना ऐसे पोस्ट में बैठ गया है, ये थोड़ी ना मित्र है, कुछ काम का नहीं मेरा, ये लोग हमेशा गलती करते रहते, इनको थोड़ी ना। तो ये हमारी बुद्धि इस प्रकार कार्य करता है कि ये तीनों के प्रति इस प्रकार का हमारा व्यवहार रहता है। लेकिन दिव्य गुणों का जिसका विकास हुआ है वो क्या सोचता है, मेरे वरिष्ठ है, उनको क्या करना चाहिए, आदर देना चाहिए, चाहे वो योग्य हो योग्य ना हो, आपको आदर देने में आपका कोई नुकसान नहीं है। दूसरा आपके जो समान होते हैं ना, सदृशे स्निग्धो भ्रातृवत, भाई जैसा भाईचारा रखना चाहिए। अगर हिसाब किताब निकाला जाए जितने लोग हैं आपके, जो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो लिस्ट में कौन आता है मालूम है, जो आपके सबसे करीब है ना वही आता है, कोर्ट में केस होता है 70% केस जो है वो दो भाइयों के बीच में है। और आपका फ्रेंड क्या है, नहीं अमेरिका में रहता है, क्या होता है ईमेल में बात करते हैं, जितना दूर है वो आपका करीब क्लोज फ्रेंड है, आपके साथ में जन्म लिया है वो दुश्मन है, तो क्या कहेंगे? ये सब क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव की वजह से। देखिए आध्यात्मिकता के बिना, स्पिरिचुअलिटी के बिना कोई भी गुण हमारे मन में टिक नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अच्छा समाज बन ही नहीं सकता। आजकल लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छा समाज हो, लेकिन धर्म नहीं चाहिए, गीता नहीं चाहिए, भागवत नहीं चाहिए, अच्छा समाज हो, कैसे होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। जहां गीता और भागवत नहीं, वो जानवरों का समाज है, लड़ाई झगड़ा का समाज में 10 कुत्ते क्या करते बताइए? वो झगड़ा करते हैं, दूसरा कुत्ता दूसरा मोहल्ले से उसे करेंगे, बाद में वो जानेगा तो अपने आप में झगड़ा करेंगे, भोगते रहेंगे। आपने देखा कोई और कुत्ता है तो स्वागत किया है कि बैठा है कुत्ता और बैठ, कोई बोलता है नहीं? करता है। लेकिन मनुष्य ऐसा हो गया अभी आजकल, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन नहीं होता है। आगे दासवत सन्नतांग्रह पितृवत दीनवत सना धातृवत सज्ञते सदृशे स्तिग्धो। और गुरुषु ईश्वर भावना, गुरुओं के प्रति क्या भावना होना चाहिए? साक्षात भगवान है गुरु, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे आचार्याम मां विजानियाम। इन सारे श्लोकों में कहा गया है कि गुरु जो है वो भगवान की प्रतिनिधि है, तो भगवान की प्रतिनिधि होने के नाते उनको हमको इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ताकि वो साक्षात भगवान हो। इसलिए गुरु ईश्वर भावना विद्यार्थ रूप जन्माद्यो मानस स्तंभ विवर्जिता। प्रहलाद महाराज सारे विद्याओं से युक्त थे और राजा के पुत्र है, बहुत सुंदर थे, सारे जितने भी यश है सब कुछ है, होने के बाद भी मानस स्तंभ विवर्जिता, जरा सा भी अहंकार नहीं है। अत्यंत विद्या वो चीज है जिसके द्वारा हमारी नम्रता आती है। विद्या ददात विनयम, विनयम ददात विद्या। जितना व्यक्ति नम्र होता है उतना विद्या बढ़ती है, जितना विद्या बढ़ती है उतना नम्र होता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ना घर में ना स्कूल में इन गुणों का चर्चा नहीं होता है। क्योंकि अगर गुणों का चर्चा क्यों नहीं होता, अगर बोलने में तकलीफ होता है ना, अगर मान लो कि एक मां बच्चे को बोले बेटा गुस्सा मत करो, बच्चा हंसने लगता है, कल रात को क्या किया था आपने? क्योंकि बोलने का भी अधिकार खो गए हम लोग। पिता बोलेंगे बेटे को बेटा झूठ मत बोलो, अच्छा मुझे बोल रहे हो आपने क्या किया था? तो बोलो मत, किसी को बोलो मत। ऐसा स्थिति अभी कैसे माता पिता बन सकते हैं, कैसे कोई टीचर बन सकता है बताइए? इसलिए हम ये पूरा गुणों का वर्णन जब चल रहा है, जब प्रहलाद महाराज का गुणों का वर्णन में पूरा सार क्या था, सार यह है कि व्यवहार। हाथ करके अभी 3 प्रकार के लोगों के विषय में जब मैं कहा, सबसे पहला क्या है? हमारे वरिष्ठ होते हैं उनको आदर देना सीखना चाहिए। हर माता पिता चाहते हैं बच्चे मुझे आदर दे, कैसे देंगे? आपने अपने बड़ों को आदर दिया है? नहीं दिया तो क्यों देंगे? तो इसलिए आदर जो है ऊपर प्रभावित होता है, और प्रेम जो है दीनवत्सला, दीनों के प्रति वात्सल्य भावना, प्रेम जो है नीचे की ओर प्रभावित होता है, और मित्रता जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी हमारे समान लोगों के बीच मित्रता की भावना प्रवाहित होता है। ये सोचना कि मैं जप कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरा भक्त का वेशभूषा है, गुण अपने आप आ जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। अपने आप आता है इसका मतलब केवल भक्ति के द्वारा ही आता है। ये गुणों को विकसित करने का अति तीव्र प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि जितना दिव्य गुणों का विकास हमारे हृदय में होगा उतना भक्ति करना आसान होगा। हृदय में अहंकार भी बढ़ रहा है और साथ साथ में भक्ति जप भी कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं जप नहीं होता है, शास्त्र अध्ययन नहीं होता है, इससे सरल चीज क्या बताइए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इससे सरल चीज कुछ है? लेकिन वो भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसी की वजह से, क्योंकि गुणों का अभाव, रजस और तामसिक गुणों का प्रभाव की वजह से ये सबसे सरल जो हरे कृष्ण महामंत्र है, महाप्रसाद ग्रहण करना, भक्तों को देख के आराम से जीवन यापन करना, कुछ सेवा करना, ये नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है इतना सरल चीज? ये दिव्य गुणों का अभाव की वजह से। इसे बार बार स्मरण करना चाहिए कैसे दिव्य गुणों का विकास हो हृदय में। आदर देना सीखना, कोई गलतियां करता है उनको माफ करना सीखना, और समाज के लोगों के प्रति केवल मित्रता की भावना रखना, उनसे कोई उपेक्षा नहीं करना, ये मेरे लिए वो नहीं किया, मुझे देखा नहीं, मुझे एक नहीं किया, ये सब चीजें जो है वो आप सोचोगे प्रभु जी ये तो बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज नहीं है, ये हो सकता है और करना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी शांति से जी नहीं सकते। आगे नारद जी वर्णन करते, प्रहलाद महाराज दूसरों के साथ व्यवहार का वर्णन करने के बाद अभी किस प्रकार अपने हृदय के साथ, अपने मन के साथ क्या व्यवहार करते हैं वो उसका वर्णन थे करते हैं। नारद जी, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेश निस्पृह श्रुतेश दृष्टेश गुणेश वस्तदिक कांतेन्द्रिय प्राण शरीर सदा प्रशांत कामो रहितासुरो सुरा। तो नारद जी एक बात कहते हैं, रहित आसुरो असुरहा, भले ही प्रहलाद महाराज असुर परिवार में जन्म लिए फिर भी उनके अंदर कोई असुरी प्रवृत्ति नहीं था। जो बैठे हैं कोई असुर परिवार में जन्म लिया है? मैं आशा करता हूं नहीं है। एक ब्रह्मचर्य हाथ उठा रहा है। तो यही तकलीफ है, सोचते हैं कि मैं प्रहलाद हूं, मैं पिता हिरण्यकश्यप हुए। नहीं बोला था मैं, एक बार चिट्ठी लिखा था पिताजी को कि आप हिरण्यकश्यप हो। जब मैंने सीरियल को बताया उसने कहा ठीक है तुम लिख सकते हो, लेकिन जब तुम प्रहलाद बनाओ तब लिख सकते हो। अधिकार नहीं है, हो सकता है हिरण्यकश्यप, लेकिन आपका बोलने का अधिकार तभी है जब आप प्रहलाद हो। तो मैं तो प्रहलाद जैसा इतना नहीं हूं। जो भी है, बात यह है कि ये असुर कुल में जन्म लिया है। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी रहित असुर, कोई उनके अंदर असुर की भावना, असुरी गुण नहीं है, असुरी भावना नहीं है। आश्चर्य की बात यह है। और नोद्विग्न चित्तो न उद्विग्न चित्त, उद्विग्न मतलब एजिटेट, विचलित होना। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेश निस्पृह, उनका हमेशा जो मन जो है कभी भी डिस्टर्ब नहीं था, शांत है। देखिए परेशान करना जितना कसूर है उससे बड़ा कसूर है परेशान होना। किसी आए कोई ने कहा कि भू मैं बहुत परेशान हूं, परेशान करना जितना जुल्म है ना उससे बड़ा परेशान होना ज्यादा जुल्म है। परेशान करना बुरी चीज है, लेकिन उससे बुरी चीजें परेशान होना। तो ये आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, परे वो तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहे, लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हो? उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है कि नहीं? एक भक्त आया, प्रभु जी ये भक्त मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं हंसते हुए रहा, तुमको क्यों परेशान हो रहा है? वो कर रहा है ना, वो कर रहा है, उसका काम है, तुम क्यों हो रहे हो? मेरा प्रश्न ये है, तो समझ में नहीं आया। बोले सोचने लगे, क्या रोज आप बोलते बराबर है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो परेशान कर रहा है वो अलग बात है, ठीक है, वो तो मैं बाद में बात कर लूं, लेकिन पहला है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उसका इलाज बाद में करेंगे नहीं, सबसे पहले तुम्हारा इलाज करना है, क्योंकि तुमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करना है। वो परेशान कर रहा है वो बाद में देख लेंगे। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला इलाज किसका किया जाता है? जिसने एक्सीडेंट किया, नो एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसका इलाज होता है कि नहीं? तो पहले तुम्हारा इलाज करने, क्योंकि तुम परेशान हो रहे हो। तो क्यों हो रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो है उसकी परेशानी के ऊपर गया है, उसके ऊपर गया, तुम्हारा ध्यान कृष्ण में नहीं, यही समस्या है। अगर तुम्हारा ध्यान कृष्ण में होता तो परेशान नहीं होते। जैसे प्रहलाद महाराज परेशान हुए, कम से कम इतना तो बात है कि हिरण्यकशिपु जैसा तो कोई परेशान नहीं किया ना आपको, दो तीन अपशब्द बोला होगा या दो तीन मारा होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना, उससे बढ़कर कोई परेशान किया है? कुछ दो तीन बार निंदा किया होगा, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसा कोई तो किया नहीं ना, लेकिन प्रहलाद जैसा, प्रहलाद का स्मरण करो, प्रहलाद महाराज इतना सारा परेशानी होने पर भी एकदम बिल्कुल प्रशांत, कुछ प्रशांत। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आप अगर परेशान हो रहे हो तो मैं बहुत दीन हूं, नहीं, परेशान करने से ज्यादा बुरी बात है परेशान होना। नौ उद्विग्न चित्त व्यसनेषु निष्प्रिया, व्यसनेषु निष्प्रिया मतलब व्यसन मतलब कोई भी इंद्रिय विषय वस्तु है, इंद्रिय भोग को व्यसन कहा गया है, गुटखा पान तंबाकू शराब कोई व्यसन नहीं कहा गया है, कोई भी विषय वस्तु जिसका हमको आदत हो जाता है, इंद्रिय विषय वस्तु, उसको व्यसन कहा, व्यसनेषु निष्प्रिया, कोई स्प्रिया नहीं। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्, श्रुतेषु उनके बारे में सुनने का बात भी, दृष्टेषु देखने पर भी बिल्कुल अविचलित है। देखा जाए इंद्रिय विषय हमारे सामने नहीं तो सामने नहीं है फिर उससे ज्यादा हम प्रभावित नहीं, अलग बात है, लेकिन आजू बाजू में सारे इंद्रिय विषय वस्तु हैं लेकिन फिर भी उनके प्रति स्पृहा नहीं रहना, ये अस्तित्व में सेंस कंट्रोल कहा जाता है। देखिए भगवान का कृपा यही माना जाता है जब विषय वस्तु सामने रहने पर भी उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। विषय वस्तु नहीं है तो प्रभावित होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारा इंद्रिय विषय वस्तु आजू बाजू में है, राजा के पुत्र है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का चित्त इधर उधर नहीं गया है। वैशेष निष्प्रिया, ये स्वयं नारद जी कह रहे प्रहलाद विषय में, दांतेन्द्रिय प्राण शरीर दिस्सदा, अपने इंद्रियों को और प्राण प्राणवायुओं को, शरीर इंद्रियों को, दांत इंद्रिया प्राणाधि मतलब बुद्धि को, मन को सदा हमेशा वश में रखे है, और प्रशांत कामो, प्रशांत कामो, और सारे प्रकार की कामनाओं को प्रशांत करके बैठे, शांति से रहे, यानी उनको सारे कामनाओं को, प्रजा आदिदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सारे कामनाओं को दूर करके उनको आने पर भी उसको प्रोत्साहन नहीं करते हुए प्रहलाद महाराज इतना जीवन यापन किया। तो नारद जी कहते देखो युधिष्ठिर महाराज, यस्मिन् महद्गुणाराजन् विह्यन्ते कविभिर्मुहु, प्रहलाद महाराज का गुण ऐसा ही नहीं मैं खाली वर्णन करना हूं, मैं गुरु हूं अपना शिष्य का वखान नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मुझे तो मेरा शिष्य का गुणों को वखान करने में आनंद आ रहा है, लेकिन साथ साथ में दुष्ट ये बात सुनो, कबीर गृह्यंते, कबीर मतलब महान कवि लोग, महान भक्त लोग, संत लोग, विद्वान लोग भविष्य में और पहले भी गृह्यंते मुहु बार बार क्या करते हैं, यस्मिन महद गुणा राजन, प्रहलाद महाराज गुणों को बार बार वर्णन करते हैं, जहां जहां प्रसंग होता है ना, सभा होती है आध्यात्मिक सभा में, वो जब कहेंगे हमको दिव्य गुणों को विकास करना है, कैसे, प्रहलाद जैसा, प्रहलाद का कोटेशन करेंगे वो लोग, प्रहलाद जैसा होना चाहिए, प्रहलाद महाराज एक स्टैंडर्ड बन गए, एक मापदंड बन गया कि हमारे किस प्रकार, हमारे हृदय में किस प्रकार के गुण होना चाहिए, उसका एक आचार्य बन गए हैं। और भविष्य में बहुत सारा कोटेशन चल रहा है, नते दुना प्रियंते यथा भागवतीश्वरे, जिस प्रकार भगवान के अंदर दिव्य गुण होता है ना, वो सारा दिव्य गुण भागवतीश्वरे, भगवान का गुण है, उनके प्रहलाद महाराज के अंदर प्रकट हो गए। यम साधुगात सदसी दीपवोपी सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्या भवत्रिशा, द असेंबली वेयर द डिस्कोर्स अबाउट सेंट्स एंड डिवोटिस, जहां जहां भक्तों की चर्चा होती है, वो युधिष्ठिर इवन ये जो असुरों के बीच में भी कभी चर्चा होगी भक्तों के विषय में, प्रहलाद महाराज को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जब सद्गुण की जब ये बात आती है, प्रहलाद महाराज को उदाहरण दिए कि दिए बिना कोई सद्गुण क्या है उसका निरूपण ही नहीं कर सकता है, अच्छे गुण क्या है कोई निरूपण नहीं कर सकता, एग्जाम्पल दिया जाता है प्रहलाद महाराज का, उदाहरण दिया जाता है, कहा गुणे रलम्ब संख्येत, असंख्य गुण है प्रहलाद महाराज, मैं लिस्ट बताते जाऊं कितना बताऊंगा, महात्यंतस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्या नैसर्गिकी रति, प्रहलाद महाराज के गुणों को वर्णन करते हुए उनका इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैं कितना बताऊं, लेकिन सार रूप में बताओ, प्रहलाद महाराज का जो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है ना, नैसर्गिकी प्रति, ये स्वाभाविक आकर्षण है। प्रहलाद महाराज जी आगे कहते हैं हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु कि तुम्हारा ये बुद्धि कौन दिया, प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये बुद्धि मेरा स्वाभाविक तरीके से, जैसे एक चुंबक लोगों के प्रति आकर्षण होता है ना, वो स्वाभाविक होता है, उसी प्रकार मेरा जो आकर्षण भगवान के प्रति वो स्वाभाविक है, ऐसा प्रहलाद महाराज भी कहते हैं। और आगे इधर नारद जी सबको, सारी सभा को राजसूय यज्ञ जो हुआ युधिष्ठिर महाराज का, ऐसा यज्ञ हुआ नहीं था, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा बड़ा फेस्टिवल था वो, इतना हद तक कि ऐसा कहा गया है और एक उपपुराण में, जब राजसूय यज्ञ में इंद्र आया तो इंद्र ने देखा पूरा दूर से, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा, तो पूछा कि ये कौन सा शहर है, तो उनके असिस्टेंट ये शहर नहीं है, ये पंडाल है, इंद्र ने पंडाल है ये तो मेरी अमरावती से भी अच्छा है, यानी इंद्र की अमरावती से इंद्रप्रस्थ का जो ये पंडाल प्रोग्राम था, राजसु यज्ञ का पंडाल उससे बढ़िया था, सारे देवता लोग देखने के लिए आए, इतने इतने लोग आए और सबके सामने चर्चा चल रही, किसके विषय में, प्रहलाद के विषय में चर्चा चल रही, व्यास देव भी है, सब लोग हैं, स्वयं नारद जी सबको प्रवचन सुना रहे हैं और कृष्ण भी है, कृष्ण भी आनंद ले रहे प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हुए। ये पूरा जो वर्णन है 10 अध्याय, नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे, लेकिन साथ साथ में कौन कौन बैठे हैं, सब लोग बैठे, सारे ऋषि सारे देवता, जहां कृष्ण स्वयं उपस्थित है उधर भी ये प्रवचन चल रहा है, इसकी विशेषता ये है, जो गुणों का निरूपण हो रहा है, गुणों का स्टैंडर्ड का वर्णन हो रहा है। इसलिए ये हमारे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि दिव्य गुणों का विकास हो हृदय में, मैं लोगों से अच्छा व्यवहार करूं, और आदर देने की जो प्रथा है वो सीखूं। वी हैव टू डेवलप दिस क्वालिटीज। जब हमारे अंदर गुण आएंगे तो हम दूसरों को दे सकते हैं। बाद में नारद जी प्रहलाद महाराज के जो भक्ति के गुणों को वर्णन करते हैं, यानी भक्ति ये भी भक्ति के संबंधित गुण हैं, लेकिन जो मूल भक्ति भगवान के प्रति जो प्रेम का जो लक्षण है उसका वर्णन करते हैं। कैसे थे प्रहलाद महाराज जी? जैसे माँ बच्चे गोद में लेते हैं, बच्चा को मालूम नहीं रहता वो कहाँ है, उनको एक ही चीज मालूम है, मैं माँ की गोद में बैठा हूं। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं माँ, वो क्या भैंदर में है, मीरा रोड में, कहाँ है, उस बच्चे को मालूम नहीं रहता है, जड़वत। प्रहलाद महाराज का इसी प्रकार व्यवहार था इस जगत के साथ। कुछ फर्क नहीं क्या हो रहा है इस जगत में, किसके साथ क्या लेना क्या करना, वो कुछ फर्क नहीं था, उनको एक ही चीज मालूम था, कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया है, बस। तो ये प्रहलाद महाराज के विषय में है। अभी हम समाप्त करेंगे, कोई प्रश्न है तो पूछेगा। हरे कृष्ण। बराबर। इनका प्रश्न है कि अगर मान लो कि कोई हमको परेशान कर रहा है, परेशान नहीं होना चाहिए हमको, हमारा भक्ति में ध्यान देना चाहिए, लेकिन अन्याय को सहन करना भी अपराध है कि नहीं? सबसे बड़ा अन्याय क्या है? मेरा मन भगवान में नहीं है, इससे बढ़कर कोई अन्याय है? हमारे साथ जो सबसे बड़ा अन्याय क्या है मालूम है? मेरी मन मैं भगवान में नहीं लगा रहा हूं, इससे बढ़कर कोई अन्याय है? तो सबसे पहला इस अन्याय के ऊपर विचार कीजिए, और सबसे पहला इस अपराध को दूर कीजिए। मान लो जब आपको ये अन्याय को सहन नहीं करते हैं, भक्ति में बढ़े तो आपको क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। वो ऐसा धन है कोई चुराई नहीं सकता। मान लो कि वो धन को चुराने भी आएगा ना, मिल भी गया तो उसके लिए बड़ा है। देखिए, आपको कोई भी व्यक्ति संसार में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्या बिगाड़ पाएगा, वो खुद बिगड़ा हुआ है तो वो खुद बिगड़ा हुआ है, वो क्या बिगाड़ पाएगा, क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कृष्ण और कृष्ण भक्ति का प्रचार में अगर कोई व्यक्ति दोषी या कोई द्वेष करता है, सेवा के रूप में कुछ प्रतिशोध करना वो उचित है, उचित है। लेकिन निजी, जैसे प्रहलाद महाराज ने राज्य किया, लेकिन हजारों साल राज्य किया, उस समय अगर कोई गड़बड़ करता था दंड देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देते थे, ठीक है, वो भी कर्म के हिसाब से चल रहा है, लेकिन गुण तो थे, दिव्य गुण तो थे। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा, भक्त अद्वेष्टा सर्वभूताना मित्र करुण एवच, लेकिन अंत में कहते युधिष्ठिर को मारो, युधिष्ठिर को, दुर्योधन को मारो। अर्जुन का जो दुर्योधन का मारना जो है, या गौरवों का मारना जो है, वो भी उनका करुणा से था। तो इसलिए अगर दिव्य गुण हृदय में है तो उसको अगर बहिरंगिक रूप में जब व्यक्त करना हो, उस प्रकार का हमारा बुद्धि भगवान देंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है, गुणों का विकास होना जरूरी है। और कोई प्रश्न? एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा प्रश्न, वेरी गुड। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचन सर्वेर गुणे सत्र समासते सुरा। भक्ति करने के द्वारा अपने आप ये सारे देवियों के प्रकट होते हैं। सही बात है। आप कितने साल से कर रहे हो भक्ति? 3 साल? 8 साल? तो कितना परसेंट दिव्य गुण आ गया है आपके अंदर? 10% आया। चलिए, बहुत बड़ी बात है 10% भी। सर्टिफिकेट मिले आपके पास 10% है, मुझे अभी तक कोई दिया है नहीं सर्टिफिकेट। कितना है वो किसी को मालूम नहीं है। अपने आप आते हैं ये सही बात है, लेकिन ये समझ के अगर कोई उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है तो सहजे कहा जाता है। जैसे भागवत में कहा गया है वशो गृणन आपन्न संस्मृति गोराम यन्ना वशो गृणन अत सद्य उच्छेद द्विवेदी स्वयं भयम। विवशावस्था में भगवान का नाम लेंगे ना, फिर भी सारे जितने भी अभद्र है वो नष्ट हो जाता है। विवशावस्था, विवशावस्था सोते सोते भी, सोते सोते भी भगवान का नाम ऐसे ले लिया ना। आपन्न संस्मृति घोराम यद नाम वशो ग्रहण ततस्सद्यो विमुच्येत यद विभेतिम स्वयं भयम। भगवान का नाम, भय स्वयं भगवान के नाम से डर के भाग जाती है। अगर विवशावस्था में भी लेता है भगवान का नाम तो उसको क्या होता है, सारे अभद्र है, इनसेक्योर फीलिंग है, वो सब नष्ट हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। लेकिन ये श्लोक क्यों कहा गया है? नाम का महिमा का वर्णन करने वाला श्लोक है। बल्कि ये नहीं कि ये श्लोक के द्वारा उपदेश दिया गया है सोते सोते जप जप करो। इसी प्रकार जो भगवान का दिव्य शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति करता है उनके अंदर सारे दिव्य अपने आप समा जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है, हमारी महिमा नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास भी करना है, नाम जप भी करना, साथ साथ में ये दिव्य गुणों का विकास करने का भी प्रयास करना चाहिए। नहीं तो साजिया सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, आ जाएगा अपने आप आएगा, तब तक वैसे असुर जैसा रहूंगा मैं। नहीं, भले ही वो गुण नहीं है, गुणवान व्यक्ति के रूप में आचरण करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, जिसके द्वारा वो स्वाभाविक हो जाता है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में आदर देने की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति हो ना हो देने का प्रयास करते करते देते देते क्या होगा, वो स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन इसलिए बहुत केयरफुली ये सब जितने भी गुण हैं गुणवान व्यक्ति के रूप में हमको करना जरूरी है। ठीक है, और कोई प्रश्न? एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, इनका प्रश्न है कि आजकल सब लोग इंडस्ट्री में रहते हैं तो उधर कृष्ण का स्मरण हो सकता है, छोड़नी पड़ेगी आपका इंडस्ट्री जो है हिरण्यकश्यपु का जो असुर समाज था वैसे था, वो कुछ अलग है, उससे भी गया गुजरा है। चलो ठीक है, नरक है, नरक जैसे समझ लीजिए। मां के घर में भक्ति किया था कौन? छोटे आयु में भक्ति किया कौन? ध्रुव महाराज। युवावस्था में भक्ति किया कौन? अम्बरीश महाराज। वृद्धावस्था में भक्ति किया कौन? अजामिल। नरक में भक्ति किया कौन? चित्रकेतु। हमारी जो भक्ति है वो हमारी भौतिक स्थिति के ऊपर आधारित नहीं है। कोई भक्ति आ रहा था, प्रभु जी क्या है हमारा जब घर में भक्ति बराबर होता नहीं है, क्यों मालूम है? 1 BHK है। जैसे 2 BHK हो जाएगा ना, एक कमरा केवल भक्ति के लिए पहुंचे, भगवान का नाम रखे, उधर जाके हम बराबर जब कर रहा है, तो 2 BHK का प्रयास कर रहा हूं लेने के लिए, बस ایک سال کے بعد آیا آپ انویٹیشن ابھی 2 BHK کے ہو گیا آپ آئیے پہنچیے پورا کمرہ یہ سب دکھایا بعد میں 6 مہینے تک دکھتا ہی نہیں مندر میں تو میں نے کہا آپ کا بھکتی بہت اچھا ہوتا اگر مندر آنے کی ضرورت نہیں آپ نے مندر بنا لیا اپنے گھر میں پھر کیا کروں پرو جی ہم کو 50,000 روپے مہینہ گیم میں بھرنا پڑتا ہے اس کے اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا جب کرنے کے لیے بولے یہ 1 BHK اچھا کرا تمہارا تو یہ سوچنا کہ میری بھوتک اوستھا کے وجہ سے میری بھکتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بھکتی جو ہے وہ کوئی بھی بھوتک پرستھتی کے اوپر آدھارت نہیں ہے جی پرہلاد مہاراج رہی تھا آسر اور ویشن کہاں تھا اسروں کے سماج میں تھا نا پورا راون راج میں پورا لنکا میں ایک ہی تلسی پڑتا ہنومان نے سوچا یہ ایک بھکت کا مل گیا چلو ایک تو راستے ہیں اگر چاہے تو راستے ہیں اگر آپ بھگوان کا بھکتی کرنے کا راستہ اگر آپ اس انڈسٹری میں ڈھونڈیں گے تو بھگوان آپ کے لیے اور ایک راستہ ہی بنائیں گے وہ کیا ہے مجھے مت پوچھیے ان سے پوچھے گا لیکن کیسے بھکتی کرنا ہے اس انڈسٹری میں کہیں بھی آپ کی جو پرستھتی اس پرستھتی میں کیسے بھکتی کرنا ہے سوچیں گے پرستھتیوں کا بدلی کرنے کا پریاس مت کرو ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج سچویشن ٹرائی ٹو چینج یور سیلف پریورتن کہاں ہونا چاہیے کیا کہاں پریورتن کرنے کا پریاس کرنا چاہیے اپنا ہدے کا پریورتن کرنے کا پریاس کرنا آگرہ اگر ماحول کو پریورتن کرنے کا پریاس کرو گے آپ کا ہرد اور کلمش سے بھر جائے گا ٹھیک ہے بھرے ہوئے پرہلاد مہاراج کے جو سارے گن جو ہے بھگوان نے کھلے عام پرکاشت کیا پرہلاد مہاراج نے ایک ہی جگہ پرکاشت کیا ہے سوئم پربھوپاد نے وشو بھر میں پرکاشت کیا ہے پورا وشو بھر میں ایک گن آپ بتائیے چلو کوئی پربھوپاد کا لیلا سمرن ہوتا ہے بتاؤں گا ہاں آتمت سربھوتےشو آتمت سربھوتانام آتمت سربھوتانام مطلب پربھوپاد جی کا ویوہار لوگوں کے ساتھ کیسا تھا میں ایک چھوٹا سا ادھارن بتاؤں گا بڑا آشچر جنک ادھارن ہے میں اپنے سکشا گرو سے پوچھا تھا کہ پربھوپاد جی کے ششیہ ہے پوچھا کہ آپ کو پربھوپاد جی کے اندر ایسا کون سا چیز اچھا لگا کہ آپ ادھر رہ گئے کیونکہ مجھے معلوم تھا بہت سارے وہ سنستھا یہ سادھو ادھر کے ادھر وہی گئے تھے تب انہوں نے ایک بات کہا میں کہیں بھی گیا کوئی بھی اس سمے کے کوئی یوگی کوئی تانترک کوئی سادھو اس کے پاس گئے تھے جس جگہ جا کے جن سے ملا وہ کچھ وچتر ویوہار کر رہے تھے کوئی بیٹھا تھا مجھے میں جیسے گیا مجھے ایسا دیکھنے لگا بعد میں دیکھا ادھر دوست تو وہ لوگوں نے جا کے مجھے نزدیک لایا اور بولا پرنام کرو میں جا کے ایسا پرنام کیا یہ بڑے مہاراج جیسے بیٹھے تھے وہ ان کا پیر کو میرے سر کے اوپر رکھا میں سوچا کیا ہو رہا ہے ادھر پہلی بار کوئی جا کسی سے ملا تو پیچھے آدمی جل رہا ہے اور ادھر ایسا بیٹھا ہے اور مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہے اور سب لوگ بولتے چھپ رہو کچھ عجیب تھا انیکوں کو جگہ گیا کم سے کم 20-25 جگہ گیا سب جگہ کچھ نہ کچھ عجیب لگ رہا تھا لیکن جب پربھوپاد سے ملا پربھوپاد جی مجھے دیکھے کچھ زیادہ بولے نہیں آؤ ایسا کہے اور ان کے بازو میں بھکت تھے ان سے کہا ان کو لے کے جاؤ پرساد کھلاؤ ان سے میں بعد میں ملتا ہوں تب وہ بھکت نے مجھے کہا پربھوپاد وہ شش نے کہا مجھے کہ پربھوپاد جی کو جب ملا مجھے پتا لگا کہ واز دا موسٹ نارمل پرسن آن دس پلانٹ نارمل پرسن مطلب جس پرکار جیسے ویوہار ہونا چاہیے اس پرکار نے کیا لیکن سب لوگ عجیب عجیب کر رہے تھے तो लोगों के मन में ऐसी बात ऐसी ऐसी चीज रहता है, आध्यात्मिकता मतलब विचित्र व्यवहार नहीं, आध्यात्मिकता मतलब मोस्ट सबसे सरल और उचित व्यवहार, मोस्ट नॉर्मल पर्सन। एक बच्चा भी प्रभुपाद से बात कर सकता था, हमने देखा एक बच्चा जोड़ी सी बड़ी का सरस्वती है कि नहीं, एक बुढ़ा व्यक्ति प्रभुपाद से बात कर सकता था, युवक भी बात कर सकता था, युवती भी बात कर सकते थे, सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर, नो अबनॉर्मैलिटी, दिस इज ये प्रभुपाद गुण है। कोई पॉलिटिशियन आए, बड़ा बिजनेसमैन आए, उनके साथ एकदम बिल्कुल साधा ऐसा उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, उस प्रकार व्यवहार किया, क्योंकि जो आध्यात्मिक गुणों से युक्त रहता है उनके अंदर लोगों के साथ व्यवहार करने की कुशलता भी अपने आप आ जाता है। जैसे षड गोस्वामी, धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो, धीरों के प्रति भी अधीरों के प्रति भी। कल एक भक्त से चर्चा चल रही थी, ब्रह्मचर्य आश्रम विषय में चर्चा चल रही थी, प्रभु जी कभी कभी एकाल आ जाता है ना, उससे बहुत परेशान हो जाते हैं हम, बहुत तकलीफ हो जाती है, वो होता जाता है हमको मैनेज करना नहीं हो पाता है। मैंने कहा कि प्रभुपाद जी के टाइम में देखो वो कैसे मैनेज किए, वो टाइम में कैसे कैसे वादे थे मालूम आश्रम में, सोच के हैरान हो जाओगे, बड़े विचित्र लोग, पागल काना बेटर है, लेकिन उन सबको भगवान प्रभुपाद जी सेवा में लगाया, क्योंकि कमी जो है किसके अंदर है, हमारे अंदर है। अगर व्यवहार अच्छा है तो सबको मैनेज किया जा सकता है, और व्यवहार बराबर नहीं है तो अपने आप को भी मैनेज नहीं कर पाओगे, दूसरों को क्या कर पाओगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।